हरे कृष्णा, आपका प्रश्न है, शास्त्र सेज लिविंग एंटिटीज आर इटर्नल और सनातन धर्म इज टू सर्व द लॉर्ड एंड गेट कनेक्टेड टू हिम, देन ऑल डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन शास्त्रास और हिंदू धर्म ओनली फॉलो शास्त्रा. When Shastras are foolproof authentic, why all different religions exist? अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है कि यदि भगवान एक हैं और जीव आत्मा का एक ही कर्तव्य है कि भगवान के साथ अपना संबंध निर्माण करे, वही सनातन धर्म है, तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्या दूसरे धर्म भी सच्चे हैं, शास्त्र ऑथेंटिक हैं, शास्त्रों पर वैसेज हैं या नहीं है? और इतने सारे धर्म हैं तो सच्चा धर्म कौन सा है और वास्तव में हमें कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है. वास्तव में यदि देखा जाए तो सभी धर्म सच्चे हैं, गलत कोई धर्म नहीं है. आप देखिए, बात को समझिए, सभी धर्म सच्चे हैं, सभी धर्म शास्त्र पर ही डिपेंडेंट हैं, परंतु धर्म के लेवल में अंतर है. सच्चे मतलब कुछ धर्म थोड़े निम्न स्तर पर हैं और कुछ ऊपर के स्तर पर, और कुछ उनसे ऊपर, कुछ उनसे ऊपर, और सबसे जो टॉप मोस्ट धर्म है वो है सनातन धर्म, सबसे उच्च धर्म. ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सबसे सच्चा धर्म कौन सा है, क्योंकि सच्चे तो सभी हैं, परंतु ये कहा जाएगा कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है, सबसे ऊंचा लेवल कौन सा है, और वो है सनातन धर्म. अब जैसे मैं आपको इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगी कि इस संसार में सबसे बड़े चार धर्म हैं मुख्य, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म और सिखिज्म, है ना. ये सारे धर्म योग्य देश और योग्य काल और योग्य पात्र के अनुसार बनाए गए हैं. आप देख सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत आज से 2000 साल पहले हुई, मुस्लिम धर्म की शुरुआत आज से 1550 वर्ष पहले हुई, सिख धर्म की शुरुआत तो बस 500 वर्ष पहले हुई, और सनातन धर्म की शुरुआत जब से ये संसार भगवान ने बनाया है तभी से सनातन धर्म है. अब इन धर्मों के लेवल में कैसे अंतर है ये मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि 2000 वर्ष पहले जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि संसार की हालत बहुत नाजुक है, सब लोग मूढ़ हैं, सब लोग इतने अत्याचारी हैं, इतने पापी हैं, इतना भी ज्ञान नहीं है कि मनुष्य को भगवान ने वेजिटेरियन बनाया है, सब लोग गाय का वध करते हैं, मांसाहार करते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य को भी मार काट कर खा जाते हैं. ऐसी भीषण स्थिति में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ. यदि ऐसी स्थिति में जीसस क्राइस्ट कहते कि आप लोग ये सब मत करो, कान वाला सुन मत खाओ, चाय कॉफी मत पियो, सोला माला का जप करो, सुबह सवेरे 5 बजे उठकर मंगल आरती करो, यदि इतना बड़ा सिद्धांत लोगों के समक्ष रख देते तो सब लोग उसे ही मार डालते कि आया बड़ा उपदेश करने वाला. इसी जीसस क्राइस्ट ने सोचा कि एक साथ डायरेक्ट से इतना बड़ा प्रहार नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इन सबको धर्म के अनुसार आचरण सिखाया जाएगा. तो फिर जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये सब ठीक है, आप पाप करते हो, लेकिन संडे टू संडे वीक में एक बार चर्च में जाओ और फादर के सामने आपने जो भी पाप किए हैं उनका बयान कर लो, आप पापों से मुक्त हो जाओगे. एटलीस्ट संडे टू संडे सबको चर्च में जाने की प्रणाली शुरू हुई, अपने पाप दोहराने की प्रणाली शुरू हुई. और जीसस क्राइस्ट सोचे थे कि आगे चलकर धीरे धीरे मैं सबको सुधारूंगा और सबको सनातन धर्म तक पहुंचाऊंगा. बाइबल में लिखा है कि मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, परंतु फिलहाल आप उसको समझ नहीं सकते हैं। वो बहुत कुछ जो बताना चाहते थे वो क्या था? वो सनातन धर्म था। तो धीरे धीरे वो उपदेश देते जा रहे थे, परंतु जब तक वो सब कुछ शुद्ध करके सनातन धर्म के स्तर पर लाकर खड़ा करते, तब तक तो बेचारे को सूली पर चढ़ा दिया गया, वो चल बसे। तब क्या हुआ? जो क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो जो उपदेश जीसस क्राइस्ट से ग्रहण किया था, उसको संकलित करके लिपिबद्ध करके इसको शास्त्र बना दिया और उसी को धर्म ग्रंथ बना दिया, और वही धर्म ग्रंथ हो गया। और वही धर्म, अब वो भी तो शास्त्र है ना, उन्होंने जो कहा था वो भी शास्त्र की बात थी, लेकिन क्या था कि उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी। वास्तव में पूर्ण धर्म नहीं है। जीसस क्राइस्ट तो धीरे धीरे सुधारना चाहते थे और पूर्ण चीज किसी को बता नहीं पाए। तो ये क्रिश्चियन धर्म जो है वो सत्य है, परंतु पूर्ण नहीं है। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर आए 1550 साल पहले, उस समय भी यही स्थिति थी। फिर मोहम्मद पैगंबर ने सोचा कि इनको धीरे धीरे सुधारना है, तो सबको कहा आप एक काम करो, पशुओं का वध करो परंतु हलाल करके खाओ। उन्होंने सोचा कि इस तरह से पशुओं का वध करेंगे, तड़पते हुए देखेंगे तो कभी ना कभी दया आ जाएगी। और उन्होंने ये भी उपदेश दिया कि आप जो ये काम कर रहे हो ठीक है, परंतु 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 1 महीना उपवास रखो, रमजान के महीने में रोजा रखो। वे भी चाहते थे कि धीरे 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 सबको शुद्ध करके लाइन पर ला दूंगा, परंतु सबको लाइन पर लाने से पहले ही वो स्वयं चल बसे। और फिर उन्होंने जो बताया सबने उसी को ही स्टैंडर्ड बना दिया। कोई व्यक्ति, जिसे मैं आपको बताऊं ये कैसे हुआ, अगर कोई व्यक्ति एक दिन 50 सिगरेट पीता है और उसे बहुत ही खतरनाक टीबी हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर यदि उसको सब बंद करने के लिए कहेंगे उसी टाइम पर, तो क्या क्या होगा? वो करेगा नहीं। तो डॉक्टर उसको कहेगा कि देखो कल से तुम्हें 30 सिगरेट पीने हैं। डॉक्टर की इच्छा ये है कि सब बंद करा दे, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट से इतना बड़ा वो बोलेगा अगर कि सारा का सारा बंद कर दो, तो नहीं करेगा। तो फिर वो 30 सिगरेट पीता है और फिर 1 हफ्ते के बाद जाकर डॉक्टर बोलता है मुझे दिखाना। 1 हफ्ते के बाद दिखाता है, डॉक्टर बोलेगा वाह तुम्हारा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अभी तुम्हारा मर्ज भी कम हो रहा है, तुमने 30 सिगरेट पिए ना, बहुत अच्छा जा रहा है, वो तुम अप्रिशिएट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब कल से तुम 20 सिगरेट पीना है और 20 सिगरेट पी के 1 हफ्ते के बाद मुझे वापस से चेक कराना। और 1 हफ्ते के बाद वो वापस आता है तो डॉक्टर और भी प्रसन्न होते हैं कि अब तो तुम बहुत ही अच्छा इंक्रीज, बिल्कुल तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल सही होने वाली है, थोड़ा सा ही मर्ज रहेगा, अब कोशिश करो बस 10 सिगरेट इस हफ्ते में तुम्हें 10 सिगरेट पीने हैं, और 10 सिगरेट तुम पियोगे तो क्या होगा, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो वो उसने यही किया, 10 सिगरेट पीना शुरू किए और डॉक्टर ने बोला देखो 1 हफ्ते के बाद मुझे चेकअप कराना। और 1 हफ्ते के बाद जब वो आता है तो पता चला डॉक्टर की मृत्यु हो गई। अब क्योंकि डॉक्टर कह के गए थे कि तुम्हें 10 सिगरेट पीने हैं, तो उसे ही स्टैंडर्ड बना दिया उसने, उसे ही आदर्श मान लिया। वैसे ही जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु संपूर्ण ज्ञान देने से पहले ही चल बसे, तो लोगों ने उसे ही आदर्श बना दिया, उसे ही स्टैंडर्ड बना लिया। उन्होंने जो उपदेश दिया वो गलत नहीं था, परंतु देश काल और पात्र के अनुसार जो मनुष्य पशुओं के स्तर पर आ गए थे, तो मनुष्य को इस पशु के स्तर से पहले मनुष्य के स्तर पर लाना था। परंतु जो लोग ऑलरेडी मनुष्य के स्तर पर हैं, जो सभ्य मनुष्य हैं, उसके लिए ये धर्म की आवश्यकता नहीं है, उसे तो सनातन धर्म का पालन करना चाहिए जैसे हरिदास ठाकुर ने किया, कीर्तनंद स्वामी श्री भक्तिपाल जी ने किया, क्योंकि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम धर्म सनातन धर्म है और बाकी सब जो धर्म है वो गलत नहीं है। कुछ धर्म शरीर के लेवल पर हैं, कुछ समाज सेवा के लेवल पर हैं, परंतु ये सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। और आप कहोगे चलो ठीक है हम सनातन धर्म की पालन करते हैं इसीलिए शायद कह रहे हैं, नहीं उसका कारण है क्यों, क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि बनाई जीवों की उत्पत्ति की तब से सनातन धर्म बनाया, करोड़ों वर्षों से है और इससे उत्तम और कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर यह प्रश्न मैं क्लियर करती चलूं कि सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर, सनातन धर्म का पहला अर्थ, धर्म का अर्थ होता है वो चीज जिसको अपने गुण से अलग ना किया जा सके। जैसे शक्कर का गुण है स्वीट लगना, तो अगर शक्कर में से मीठापन निकल जाए, स्वीटनेस निकल जाए तो शक्कर बचेगी नहीं, है ना। वैसे ही जीव आत्मा का धर्म है प्रेम करना। जिस तरह से अगर सोल्ट में से खारापन निकाल दिया जाए तो सोल्ट नहीं बचेगा, और उसी तरह से पानी में, पानी का धर्म है गीला होना, यदि वो गीला होना उसमें से निकाल दिया जाए तो पानी नहीं बचेगा। वैसे ही जीव आत्मा का धर्म क्या है, प्रेम करना, और अगर जीव आत्मा से प्रेम का स्वभाव निकाल दिया जाए तो ये आत्मा बचेगी नहीं। तो वास्तव में आत्मा का धर्म है प्रेम करना, बस यही सनातन धर्म है प्रेम करना। अब प्रेम किससे, क्योंकि आत्मा सनातन है और सनातन आत्मा जो है वो सनातन वस्तु से ही प्रेम की कर सकती है। यानी आत्मा इटर्नल है तो उसका प्रेमी भी इटर्नल होना चाहिए। जैसी मेरे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए वैसी मेरे प्रेमी के अंदर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक कुत्ता जो है वो एक मनुष्य से नहीं, अगर उसको प्रेम करना है तो एक कुतिया से करेगा। उसी तरह से एक मनुष्य जो है उसको मनुष्य ही प्रेम करने के लिए चाहिए होगा। उसी तरह से आत्मा, क्योंकि इस भौतिक प्रकृति की प्रकृति का अंश नहीं है बल्कि भगवान का अंश है, तो वो केवल और केवल अपने जैसे सनातन भगवान के साथ ही प्रेम कर सकती है। इसलिए उपनिषद कहता है न अल्पे सुखम। अल्पे का मतलब है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो अल्प है, यानी समाप्त तो हो जाने वाला है, लेकिन आत्मा क्या है, न जायते मिर्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुरा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, ये न कभी जन्मी है न जन्म लेती है और न ही जन्म लेगी। ये अजन्मा अविनाशी सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी नहीं मरता, वे नाशवंत वस्तु के साथ प्रेम नहीं कर सकती। तो सनातन धर्म का अर्थ है सनातन आत्मा के द्वारा सनातन परमात्मा के साथ प्रेम करना। और प्रेम में तो स्वतः सेवा होती है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है तत्सुख सुखित्वम। और सनातन धर्म में कभी भी चेंजिंग नहीं आ सकती। यानी सनातन धर्म की दूसरी व्याख्या अगर की जाए, दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, तो सनातन धर्म का अर्थ है इटर्नल, जो इटर्नल धर्म है, जो सदैव बना रहे, जो धर्म नित्य है, जो कभी भी चेंज नहीं होता, वो सनातन धर्म है। अब इस संसार में आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि माता की सेवा करना धर्म है, ये सनातन धर्म है, पिता की सेवा करना ये सनातन धर्म है, देश की सेवा करना ये सनातन धर्म है, पत्नी की सेवा करना ये सनातन धर्म, पति की सेवा करना, परंतु वास्तव में ये सब की सेवा करना कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो कभी बदले नहीं, वो एक ही बना रहे। जैसे आज यदि कोई अपनी माँ की सेवा कर रहा है लेकिन जब कल मर जाएगा तो दूसरे जन्म में तो दूसरी माँ मिलेगी, तो उसकी सेवा करना होगी। जिसके प्रति धर्म का पालन कर रहा था वो तो बदल रहा है, तीसरे जन्म में तीसरी माँ मिलेगी, चौथे जन्म में चौथी माँ मिलेगी। अब जो बदल रहा है वो सनातन धर्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म मतलब इटर्नल रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। सनातन धर्म का मतलब होता है नित्य बना रहे। जैसे प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि देश की सेवा करना ही सनातन धर्म है, परंतु भारत देश की सेवा आज कर रहा है और कल मर गया, और पाकिस्तान में जन्म लिया तो आज भारत की सेवा कर रहा है कल पाकिस्तान की सेवा करनी पड़ेगी, ये कोई सनातन धर्म है? ये कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है जो नित्य बना रहे, एक ही। और वास्तव में सनातन धर्म का अर्थ है सनातन अंश अपने पूर्ण भगवान की भक्ति करे। क्योंकि भगवान जो है वो सब काल, सब देश, सब परिस्थिति में एक ही बना रहे। कोई आज कृष्ण की सेवा करता है तो आने वाले जन्म में भी वो कृष्ण की सेवा कर सकता है, 10 जन्मों के बाद, 100 जन्मों के बाद, 1000 जन्मों के बाद भी वो कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो ये जो सनातन धर्म है वो वास्तविक धर्म है, ये सबसे उच्च धर्म है, और बाकी के जो धर्म है वो इस सनातन धर्म के नीचे के स्तर पर आते हैं। कुछ लोग नर्सरी में हैं, कुछ फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, कुछ सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, कुछ लोग धीरे 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 करके ऊपर आते हैं। और भगवान कहते हैं 7.19 में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान हो जाता है वो मेरे पास आते हैं, और वो क्या सोचते हैं, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही वास्तव में सब कुछ है, समस्त कारणों के कारण है, और भगवान ने उसे महात्मा कहा कि ऐसा महात्मा सबसे दुर्लभ है। वास्तव में भगवान की निगाह में यदि अच्छे बनना चाहते हो तो केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। धर्म के विषय में भागवत में जब प्रश्न उठा कि धर्म का स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है, तो भागवत में आता है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का स्टैंडर्ड और कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान ही बना सकते हैं। तो ये सिद्ध है कि वास्तव में कृष्ण की भक्ति करना ही सनातन धर्म है। क्यों? तो यहाँ पर एक प्रश्न अंतिम ये उठता है कि भक्ति, यदि कृष्ण की भक्ति करना ही सनातन धर्म है तो भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना। अब कृष्ण को कैसे प्रसन्न होंगे, हम कैसे जानेंगे? तब हम कृष्ण से पूछेंगे, कृष्ण आपको कैसे प्रसन्न करें? तो भगवान बताते हैं। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारी बात नहीं सुनते, हमें उत्तर नहीं देते। भगवान भगवद गीता में हमसे बात करते हैं। भगवान कहते हैं, आप मुझे फल दो, फूल दो, पानी दो, और मुझसे प्रेम और भक्ति के साथ जो भी मुझे अर्पण करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो ये भक्ति है। हम यदि भगवान को प्रेम से भोजन कराते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, मन से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो ये है वास्तव में भक्ति, और ये वास्तव में सनातन धर्म का अर्थ, जो कि कंप्लीट धर्म है। अब देखो, सनातन धर्म में क्या है, आपको एंड में क्या मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, है ना। एंड कहाँ तक होगा, कृष्ण, वरना तो क्या होगा, जब तक आपको कृष्ण नहीं मिलता तब तक जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, आखिर में आपको कृष्ण प्राप्ति करनी है, है ना, ऐसा होगा। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है उसे मैं ऐसी जगह पे पैदा करता हूँ जहाँ पर वो अपनी अधूरी भक्ति को और भी अच्छे तरीके से सीरीज में आगे बढ़े और मुझे प्राप्त करे। लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम से पूछो भाई आपको एंड में क्या मिलेगा, तो बोलेंगे जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। तो ठीक है, स्वर्ग मिला आपको पुण्य कर्मों के, और जो जिसने अपराध किए उसे नरक मिलेगा। तो फिर उसने जब नरक उसको मिल गया तो फिर वापस क्या होगा, उसका कभी भी नरक खत्म नहीं होगा क्या, उसका कभी भी स्वर्ग खत्म नहीं होगा? उनमें तो दूसरा जन्म ही नहीं होता, भगवत प्राप्ति का तो कोई सवाल ही नहीं, दूसरा जन्म ही नहीं मिलेगा। जो स्वर्ग में जाएंगे वो स्वर्ग में मजा करेंगे अप्सराओं के साथ, और जो नरक में जाएंगे वो जलते रहेंगे आग में। ये कोई इंसाफ है? ये कोई जस्टिस है? ये कोई न्याय है कि जिसने, अभी भगवान का मतलब होता है करुणा, करुणा का सागर है, और वो उसको झुलसते हुए नरक में भेज देंगे बस, और कुछ नहीं। और दूसरा, इस संसार में कितना अनजस्टिस है अगर दूसरा जन्म नहीं हो। एक को भगवान ने फुटपाथ पे पैदा किया और दूसरे को भगवान ने एक राजमहल में पैदा किया, तो क्या ये अनजस्टिस नहीं है? वास्तव में दूसरा जन्म होता है, लेकिन दूसरे जितने भी मजहब हैं वो दूसरे जन्म को नहीं मानते, वो कृष्ण प्राप्ति को नहीं मानते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं, वो एक स्टैंडर्ड है, लो लेवल का धर्म है। धीरे 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 जब वो उन शुद्ध होते जाएंगे ना, अपने धर्म का पालन करते 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 जब शुद्धता आ जाएगी, तो फिर उन्हें भी कृष्ण प्राप्ति के विषय में पता चलेगा, सनातन धर्म के विषय में पता चलेगा, और वो भी सही मायने में धर्म को फॉलो करेंगे, सनातन धर्म को। हरे कृष्ण।